स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का एक गहरा चिंतन है, भगवान के अनुदान किन शर्तों पर। तो सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ प्रार्थना करने से, मिन्नतें करने से ईश्वर की कृपा मिल जाती है या बड़ी सफलताएं यूं ही आ जाती हैं?
ये सवाल तो बहुत अहम है। अक्सर हम यही सोचते हैं कि मांग लो, मिल जाएगा, लेकिन पूज्य गुरुदेव का नजरिया थोड़ा अलग है इस पर।
हाँ, क्या कहते हैं वो?
देखिए, वो मानते हैं कि दुनिया में कृपा मतलब अनुग्रह और विनती यानी मनुहार, ये तो चलता है, लेकिन जो जीवन की बड़ी उपलब्धियां है ना, वो सिर्फ मांगने से नहीं मिलती, उसके पीछे कुछ और है।
अच्छा, तो फिर ये मांगने का क्या चक्कर है, मतलब गुरुदेव इसे कैसे समझाते हैं?
उन्होंने एक बड़ी अच्छी तुलना की है। वो मांगने की आदत को एक बच्चे के स्वभाव से जोड़ते हैं।
बच्चे के स्वभाव से? कैसे?
जैसे बच्चा है, वो अपनी जरूरतें खुद पूरी नहीं कर सकता, तो वो रोकर या मांगकर अपनी बात मनवाता है, और उसे छोटी मोटी चीजें मिल भी जाती हैं, खिलौने, टॉफी वगैरह।
हाँ, ये तो है।
लेकिन चाहे आध्यात्मिक जीवन हो या दुनियावी, जो व्यक्ति हमेशा इसी तरह मांगने पर ही निर्भर रहता है ना, उसे स्थायी मतलब कोई मूल्यवान चीज नहीं मिलती, बस थोड़ी देर की राहत या छोटी मोटी मदद मिल सकती है।
ये बात सोचने वाली है। और गुरुदेव कहते हैं कि ये सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है, मतलब बड़ों में भी ये दिख सकता है।
बिल्कुल, यही तो खास बात है। पूज्य गुरुदेव के अनुसार वो बड़े लोग भी जो समर्थ हैं, मेहनत कर सकते हैं, पर पुरुषार्थ करने की बजाय दूसरों से मांगकर, याचना करके काम चलाना चाहते हैं, वो मानसिक रूप से एक तरह से बालक ही हैं, परिपक्व नहीं हुए।
सही कहा।
मैं ये जरूर है कि अगर कोई सच में मुसीबत में है तो उसकी मदद करना तो हमारा मानवीय धर्म है, इसमें तो कोई शक नहीं।
वो तो है,
पर इसे जीने का तरीका नहीं बना सकते हम। मदद तो एक सहारे की तरह है, बस तब तक जब तक वो व्यक्ति खुद खड़ा ना हो जाए।
और शायद लगातार मांगने से एक और चीज पर असर पड़ता होगा, आत्मसम्मान पर, स्वाभिमान पर।
आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। पूज्य गुरुदेव इस पर बहुत जोर देते हैं। सिर्फ मांगकर या दूसरों की दया पर जीने का सबसे बड़ा नुकसान है स्वाभिमान का खत्म होना। जब कोई बिना कीमत चुकाए, बिना अपनी योग्यता दिखाए, सिर्फ एहसान में कुछ लेता है, तो उसका सिर झुक जाता है, वो देने वाले के सामने छोटा महसूस करता है।
अच्छा,
इसी बारे में वो संत एमर्सन की कहानी भी बताते हैं।
हाँ, क्या कहानी है?
कि कैसे उन्होंने एक हट्टे कट्टे स्वस्थ भिखारी को देखा तो अपना मुंह फेर लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इस आदमी ने भीख मांगकर इंसान होने की इज्जत गवा दी है।
ओ, ये तो काफी गहरी बात है।
हाँ, ये सोचने पर मजबूर करती है कि स्वाभिमान कितना कीमती है।
तो फिर अगर मांगना सही रास्ता नहीं है तो रास्ता है क्या? पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं, सिर्फ मना कर देना तो हल नहीं हुआ ना?
सही सवाल। गुरुदेव का पूरा जोर है परावलंबन छोड़कर स्वावलंबन अपनाने पर, मतलब दूसरों पर निर्भरता छोड़ो, आत्मनिर्भर बनो।
आत्मनिर्भरता,
हाँ। वो कहते हैं सच्ची आध्यात्मिकता इंसान को भिखारी नहीं दाता बनाती है, देने वाला। देवत्व का विकास मांगने से नहीं होता, देने से होता है, उदार बनने से होता है।
देने से, लेकिन क्या देना है और किसको देना है?
सबसे पहले तो खुद को देना है।
खुद को देना, ये कैसे? मतलब?
मतलब अपने जीवन को बेहतर बनाना। जैसे अपने शरीर को देखो, उसे संयम और अनुशासन से स्वास्थ्य दो। गुरुदेव ने चंदीराम पहलवान का उदाहरण दिया है, कैसे उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से टीबी जैसी बीमारी को हरा दिया।
वाह।
इसी तरह अपने मन को, उसे बेकार की चिंताओं, जलन, गुस्से से बचाकर शांति दो।
मन की शांति, हाँ, वो तो बहुत जरूरी है।
और हाँ, एक और जरूरी चीज, जीभ पर नियंत्रण। ये सेहत और शांति दोनों के लिए बहुत अहम है।
जीभ पर नियंत्रण, ये सुनने में आसान लगता है पर शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है।
बिल्कुल, और पूज्य गुरुदेव साफ कहते हैं कि अच्छी सेहत दवा या हकीम से ज्यादा आपके अपने संयम पर निर्भर करती है। जीभ पर कंट्रोल रखना होगा। स्वाद के पीछे भागेंगे तो शरीर बिगड़ेगा। और वैसे ही मन की शांति, वो बाहर के परिस्थितियों से उतनी नहीं मिलती जितनी अपने विचारों को काबू में रखने से मिलती है।
अपने विचारों को काबू में रखना,
हाँ। गुरुदेव हमारे दिमाग को एक भीतरी कंप्यूटर कहते हैं। उसे फालतू की नेगेटिव बातों से गर्म करके, हैंग करके खराब नहीं करना चाहिए। उसे शांत रखना सीखना होगा, संतुलित।
ये भीतरी कंप्यूटर वाली बात अच्छी लगी। तो मन को शांत रखना है, शरीर को स्वस्थ, ये हुआ खुद को देना।
हाँ।
और फिर वो पात्रता वाली बात आती है, गुरुदेव ने भिखारी और जवाई का एक बड़ा मजबूत उदाहरण दिया था ना, वो क्या था?
हाँ हाँ, वो उदाहरण सारी बात एकदम साफ कर देता है। सोचिए, एक सेठ जी हैं, उनके पास दो लोग आते हैं। एक भिखारी है जो गिड़गिड़ा रहा है, दो रुपए दे दो सेठ जी। सेठ का मुनीम उसे डांट कर भगा देता है या कुछ सिक्के फेंक देता है।
हाँ।
दूसरा युवक आता है, वो सेठ जी का दावाद है, जमाई। सेठ जी खुद उठते हैं, आदर से बिठाते हैं, स्वागत करते हैं और उसे कीमती तोहफे देते हैं।
हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है।
तो सवाल है, क्यों, फर्क क्यों है?
क्योंकि जवाई की एक हैसियत है, एक रिश्ता है, पात्रता है।
बिल्कुल, यही शब्द है पात्रता। जवाई में पात्रता है, उसका एक स्थान है, एक योग्यता है, भिखारी में वो नहीं है।
तो इस उदाहरण का गहरा मतलब क्या हुआ जीवन के संदर्भ में?
मतलब सीधा सा है, अगर हमें जीवन में या कह लीजिए ईश्वर से कुछ बड़ा चाहिए, कुछ कीमती चाहिए, तो भिखारी की तरह सिर्फ मिन्नतें करने से, गिड़गिड़ाने से बात नहीं बनेगी।
तो
हमें जवाई की तरह बनना होगा, अपनी पात्रता बढ़ानी होगी, अपनी योग्यता, अपना मूल्य, अपनी हैसियत ऊंची करनी होगी,
उस लायक बनाना पड़ता है।
तो मतलब इस पूरी बातचीत का सार यही निकला कि पूज्य गुरुदेव का संदेश बहुत साफ है, ईश्वर के अनुदान हो या जीवन में बड़ी सफलताएं पानी हो, वो सिर्फ मांगने या मिन्नतें करने पर निर्भर नहीं है।
बिल्कुल नहीं,
उनका आधार है हमारी अपनी योग्यता, हमारी पात्रता और हमारा अपना पुरुषार्थ, मेहनत।
एकदम सही। असल में आध्यात्मिक तरक्की का मतलब ही है खुद को देना सीखना, अपने शरीर को सेहत देना, अपने मन को शांति देना और अपने चरित्र में स्वाभिमान और उदारता लाना।
हाँ।
जब हम अपनी पात्रता बढ़ाते हैं तभी असली कृपा, असली सफलता जीवन में आती है। आध्यात्मिकता हमें आत्मनिर्भर बनाती है, दूसरों पर आश्रित नहीं। तो यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह हो सकती है कि जब वो जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भौतिक चीज हो या मन की शांति या कोई आध्यात्मिक अनुभव, तो उनका नजरिया क्या होता है? क्या वो सिर्फ मांगने वाले की भूमिका में होते हैं या फिर वो अपनी योग्यता, अपनी पात्रता बढ़ाने पर ध्यान देते हैं?
हाँ, ये सवाल खुद से पूछना काफी दिलचस्प हो सकता है। हमारा फोकस कहाँ है, मांगने पर या पात्र बनने पर?